बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूलात अशरफी, हिस्सा नंबर 14। हजरत के पास किसी रईस ने 200 रुपए की हुंडी भेजी और लिख दिया, फला दुकान से वसूल फरमा लें। दुकानदार ने भी कहला भेजा। आपने फरमाया, न हम मांगने गए थे न छुड़ाने जाएंगे। चुनाचे दुकानदार ने माजरत की और एक आदमी के हाथ मकान ही पर रुपया भिजवाया। अब बाज़ जोशीले खुद्दाम ये करते हैं कि जिस कीमत की चीज़ भेजते हैं उतना नकद भेज देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि हम चाहते हैं कि इन दामों के आम मसलन जो उम्दा से उम्दा मिले वह आप नोश फरमाएं, या किसी और के नाम थाना भवन भेज देते हैं कि वो पार्सल छुड़ाकर हजरत की खिदमत में पेश कर दें या खुद अपने साथ लाते हैं। वाकया, एक दफ़ा एहकर दिल्ली के हजरत के साथ दिल्ली से हापुड़ को रेल में रवाना हुआ। दिल्ली के बहुत आदमी मशायत के लिए आए। जब सब रुख्सत हो गए तो एक साहब ने 2 रुपए नज़र किए और हजरत ड्योढ़े दर्जे में थे और एक हिंदू सेठ भी बैठा था। हजरत उस नजराने से नाखुश हुए और फरमाया, अफसोस है कि आपको हदीये का तरीका भी नहीं मालूम। ऐसे वक्त में दिया कि मैं किस तरह अंदाज़ा नहीं कर सकता कि किस नीयत से दिया गया है, मेरे शराइत इसमें मौजूद हैं या नहीं। ये तो माने शरई है और एक माने अकली है कि ऐसे मजमे में इख्वा हो नहीं सकता, तो बाज मिलने वालों पर बार पड़ेगा और जब मिलने आएंगे तो बतकल्लुफ इसका अहतमाम करेंगे। और एक माने तबई है कि इस वक्त मेरी वज़ा क़ता और मौजूदा हालत से सबको मालूम हो गया है कि मैं मौलवी हूँ। अब ये हिंदू देखने वाले यही समझेगा कि पंडितों की तरह मुसलमानों के मौलवी भी मांगते खाते फिरते हैं। इसको मेरी गैरत तकाजा नहीं करती। बेमौका कबूल करना अशराफ नफ्स है। एक और वाकया, एक मरतबा हजरत मेरठ तशरीफ लाए। जब रुख्सत हुए और गाड़ी में सवार होने लगे तो एक साहब ने 2 रुपए पेश किए तो हजरत ने फरमाया कि यह हदिया है, यह भटियारे का कराया कि चलते वक्त हिसाब बेबाक किया है। अगर यह हदिया है तो अव्वल मुलाकात में क्यों नहीं दिया और इसको कबूल ना फरमाया। ये हदिया जो टाल कर दिया जाए जोश मोहब्बत से नहीं होता, लिहाजा तहबू में दाखिल नहीं। राखिम कहता है कि हदिया देना का मसनून तरीका है, हदिया देना मसनून तरीका है और ततीब कल्ब मोमिन और दीगर बहुत से वजूहात से दाखिल इबादत है और इबादत का मकसद खलूस और लिल्लाहियत है, तो महदी को चाहिए कि लिल्लाहियत को हाथ से ना जाने दे और ये समझ कर दे कि यह चीज़ हजरत हक जालश जल्ला व अला शानहू की बारगाह में पेश करता हूँ, तो ये समझ कर दे कि मैं ये चीज़ हजरत हक जल्ला व अला शानहू की बारगाह में पेश करता हूँ। मेहदी लहू सिर्फ वहाँ पेश होने के वास्ते हैं। जब यह ख्याल पेश नज़र होगा तो तमाम शराइत और आदाब की रियायत आप से आप हो जाएगी, न एहसान जताने का ख्याल आएगा हरसा और तरसा पेश करेगा। और वल्लज़ीन युतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन इन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन के मुस्दाक बन जाएगा, ना किसी इवज़ की तमन्ना रहेगी। बाज़ लोग इस वास्ते अपनी दुकान की चीज़ों ही में से एक चीज़ पेश करते हैं कि हमारे माल में बरकत हो और ऐसा होता भी है। चुनाचे एक कुंजरा कानपुर में जब दुकान खोलता तो पहले 2-3 फल उम्दा हजरत के सामने रख दे जाता और कहता था, आज मुझे बहुत नफ़ा रहेगा। ये अभी माह रजब 1333 हिजरी में मेरठ का वाकया है। कि मीर मासूम अली साहब मेरेठी को एक शख्स थाना भवन जाने वाला मिला। हजरत वाला के लिए मीर साहब ने कद्दू भेजना चाहा, मगर इस रोज इनके हाथ तंग था। कहीं से एक चवन्नी लेकर कद्दू खरीदे गए और फरमाने लगे, मुझे यकीन है कि अभी कहीं से मेरे पास ये चवन्नी में कुछ इजाफे के आ जाएगी। चुनाचे कद्दू खरीद रहे थे कि पुराने उनके कर्जदार आ गए, जिनसे कर्ज वसूल होने की उम्मीद ना रही थी, और 1.5 रुपया बला उनके मांगे पेश किया। एक मरतबा अहद ने बिजनौर में मौल्लहम तय बनाया और मकदार में ज़्यादा बन गया, वो किसी तरह बिकता ना था। उस वक़्त में हज़रत पीरानी साहिबा बीमार थी, एक बोतल इनके वास्ते भेज दी। बस वो भेजना थी, बहुत ही जल्दी सब मौल्लहम बिक गया। ऐसे नज़ायर हज़ारों हैं, लेकिन अहद कहता है कि ये सब नतायज महमूद हैं, इनको मकसूद ना बनाना चाहिए, बल्कि हदिया इस तरह पेश करना चाहिए जैसे अपनी औलाद को आदमी खिलाता है कि पास हो तो और ना हो तो बिला खिलाए चैन नहीं आता, और इसको खिलाकर ये जानता है कि गोया मैंने ही खाया है। मोहब्बत वो चीज़ है कि महबूब के सामने अपने आपे को भी मिटा देती है, जला देती है। इश्क शोला अश्क के चूं बर फरोख, हर चेजुस माशूख बाशत व बसोख्त। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला उन्होंने सफरे हजरत में दूध एक चरवाहे से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने पिया तो हजरत सिद्दीक फरमाते हैं, आपने इतना पिया कि मैं सैर हो गया। जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब मुरादाबादी के एक मुरीद को देखा कि वो पैसे की कोई चीज लाते और हाफिज साहब के बच्चे को अलहदा ले जाकर खिला देते। हाफिज साहब तक को खबर ना होती और कहते कि अब मेरा दिल ठंडा हो गया। चंद रोज में कुदरत खुदा से ये बात खुल गई तो लोगों ने उनका नाम बच्चों की दाई रख दिया, और उन नतायज को मकसूद करार दे लेने का नतीजा ये है कि अगर कभी हक ताला ने इम्तिहान लिया और ये नतीजा मुरतब ना हुआ तो बददिली और सुएजन बिल्ला और शेख की तरफ से बदअकीदगी वगैरह पैदा हो जाएगी, और यह ख्याल होगा कि इतने दिनों भी जो हमने खिदमत की ये सब फजूल और बेमहल रही, और इससे वो सब मुंह पर मार दी जाएगी और खसरत दुनिया वल आखिरा का मुस्ताक होगी। बल्कि गौर से देखा जाए तो अमाल पर नतायज दुनियावी का मुरतब न होना ही औला है। अमाल पर नतायज दुनियावी का मुरतब न होना ही औला है, वरना आखरत में कमी होती है। बाद साहबा ने फतूहात होने के बाद अफसोस के साथ कहा कि मकसूद को तो वो लोग पहुंचे जो मार्के में शहीद हो गए, जिन्होंने अमल के बाद कोई भी दुनिया का समरा नहीं पाया। यानी हम तो वो हैं कि हमारे फल दुनिया ही में पक गए। हदिया देने वाले को चाहिए कि यह हदिया ये समझकर हदिया दे कि मैं हक ताला को देता हूँ। ये वो जामे उसूल है कि इसके होते किसी बताने वाले और रहबर की ज़रूरत नहीं। हक ताला से मुसलमान को मोहब्बत ज़रूर होती है और वो खुद तमाम तुरक सिखा देती है। हजरत को माल को बच्चों के खिलाने के तरीके, माँ को बच्चों के खिलाने के तरीके और उसूल सिखाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। हदिया देने वालों को चाहिए कि हदिया देने के बाद बजाय उसको याद करने या एहसान जताने के अस्तग़फ़ार करता रहे और ये दुआ मांगे, या अल्लाह जो कुछ मुझसे खलूस में कमी रही हो अपनी रहमत से उस पर नजर ना कीजिए। हरचंद की अखलास उस वक्त बहुत मुश्किल है, मगर हक ताला के नज़दीक कुछ मुश्किल नहीं। ऐसे ही मौके में फरमाया गया है, इससे पहले खुशू का हुक्म है और कमा हक़ू मुश्किल है और इस पर हिम्मत दिलाने के लिए नज़ीर इरशाद फरमाई कि मुर्दा जमीन को हम कैसे जिंदा कर देते हैं, और आगे इरशाद है वल्लज़ी الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم, یعنی صدیقین اور شہداء انہی مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں, لہذا ہمت نہ ہارو اور تھوڑا کام کرو اور اس کو کامیاب بنانا ہمارا کام ہے. لہذا چاہیے کہ ہدیے میں اپنی طرف سے کسی مفسدہ کو داخل نہ ہونے دے, اگر کچھ کوتاہیاں رہیں تو حق تعالیٰ سے استغفار کرے, انشاءاللہ وہ کامل ہی ہو جائے گا. وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. خاتمہ بالخیر. کتاب یہاں ختم ہوتی ہے. اب ناظرین دعا فرمائے کہ حق تعالیٰ محض اپنے کرم و عمل سے میرے اس ناجیز ہدیے کو, جس میں نہ کوئی سوری خوبی ہے نہ معنوی اور اخلاص اور صدق کام ہی لینا بیجا کا نام ہی لینا بیجا ہے, قبول فرمائے. آمین.